इसके अपने स्पेशल हैं और चार तो विरासत में मिल गए हैं ना। अब श्रीनिवास जी, इस टॉपिक में आपको क्या कठिनाई लग रही वो बोलिए। हाँ ठीक है, अब सांद्रानंद विशेष आत्मा और मोक्ष लघुता कृत दोनों का वर्णन इस ग्रंथ में एक साथ कर दिया गया है। चूंकि दोनों रिलेटेड है, दोनों को समझाने के लिए मोक्ष ब्रह्म सुख है से ही तुलना किया गया है। आप वर्णन पढ़ेंगे तो गिनती तो छह का है लेकिन डिस्क्रिप्शन पांच में है, तो एक में ही दो का डिस्क्रिप्शन कर दिया गया। भक्ति का ज्ञान केवल तर्क से नहीं होता है। क्यों? प्रश्न सुन लिए। भक्ति का ज्ञान केवल तर्क से नहीं होता है। क्यों? आए हाँ ठीक है, और इस बात को और कम शब्द में कौन कह सकता है? बोलो। आए तर्क में श्रद्धा नहीं होती है, ठीक, लेकिन ये तो अलग बात हो गई ना। एक तर्क को दूसरा व्यक्ति खंडित कर सकता है, तो इसको कम शब्द में, इसमें संस्कृत के शब्द में क्या कहा गया है? यद अस्य अप्रतिष्ठिता, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा मतलब इसमें अस्थायित्व नहीं है। एक सिद्धांत मिला, ठीक, एक सिद्धांत स्थापित किया गया और कोई ज्यादा विद्वान व्यक्ति आ गया तो दूसरा सिद्धांत स्थापित कर देगा, और इसलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, अप्रतिष्ठिता। ये लगता है कि दूसरा ही आ गया, इसकी जरूरत थी वो नहीं है, ये भी तो रिजेक्ट है, ये भी दूसरा है। नहीं, पीडीएफ तुम्हारे पास भी सब चीज है ही है, लेकिन उस पर मैं लिखा था ना। चलिए कोई बात नहीं, ये है जो आवश्यक है। तो अब अध्याय दो निकालिए, अध्याय दो। अध्याय दो के दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। माइक है ना? क्यों माइक क्यों नहीं है? वो नीचे ले गए होंगे सार्वभौम जी के क्लास था उसके लिए। माइक नहीं है आए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक प्रश्न था, गोपियां वृंदावन का त्याग करके क्यों नहीं चले जाती है? सुने थे प्रश्न आप लोग? या कृष्ण वृंदावन क्यों नहीं आ जाते हैं? तो प्रश्न का उत्तर लास्ट में क्लास के दिया जाएगा। आप लोग रिमाइंड कर देंगे तो कभी इसका उत्तर दे दिया जाएगा। ये तो ये हमेशा माइक रहता था इसलिए अब हम देखे नहीं। तो टीचर का कार्य है कि पहले ही सब अपने क्लासरूम का सेटिंग देख ले। आए सबके सुनने पर पढ़ देंगे। पढ़िए।
इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है भक्ति ज्ञान कृष्ण भामरस के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है।
ठीक ठीक, इसी वाक्य को फिर से पढ़िए। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या में कुछ बोलिए एक दो वाक्य। श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग इस जन्म में जो भक्ति कर रहे हैं तो इसका कनेक्शन पहले से भी है ना। भक्ति जो व्यक्ति पहले किया है वही व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना। एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूअस। जो पहले भक्ति किया है तो इस जन्म में भी भक्ति कर रहा है तो ये तो ठीक है। पहले जो भक्ति किए हैं तो वही इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं। अब एक प्रश्न होगा कि मान लीजिए कि जो पहले भक्ति नहीं किया है तब तो वो भक्ति करेगा कि नहीं? तो सतत प्रक्रिया है। अब कोई ऐसा मान लीजिए कि व्यक्ति है कि पहले भक्ति किया ही नहीं है तब उसका प्रक्रिया तो नहीं बढ़ेगा ना। कि बढ़ेगा? वो कैसे आए? भक्तों के संगति से क्या हो जाता है?
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साथ में कब होना चाहिए? जो हमारे अंदर ही है जो भक्तों को संग मिलता है वो विधायक प्रस्फुटित होता है। श्रवण कीर्तन चर्चा होता है ये स्फुटित होता है। भक्तों को सुनता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में जो उसका सुप्त प्रेम है वो जागृत होता है। हमारे अंदर है नहीं।
भगवान की भक्ति जो है हमारा नित्य सिद्ध अधिकार वो है नहीं, पहले नहीं भी है तो हम भक्तों को सुन के भक्तों का संग प्राप्त करके नियत प्राप्त कर सकते।
जब यह नित्य सिद्ध है तो सतत प्रक्रिया कहने का क्या अर्थ है? नित्य सिद्ध और सतत प्रक्रिया में कुछ अंतर है कि एक ही चीज है? ये एक ही चीज होगा तब तो कोई बात ही नहीं, अंतर होगा तो क्या अंतर है?
जिनके पुण्य कर्म होते हैं, जो पहले कोई पुण्य कर्म करेगा इन चार कैटेगरी में से तो वो भक्त बन जाएगा।
कृष्ण भक्ति कौनो कर्म न है, कोई इतना हूं पुण्य कीजिए उससे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
दो कारण से हो सकता है कृष्ण भक्ति, या तो भगवान स्वयं चाहे तो भक्त को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, या कोई जो उत्कृष्ट वैष्णव है वो अगर कृपा कर दे तो इसको अवस्था हो।
ये जो कृष्ण है चाहे कि भक्ति हो जाए तो वे तो चाहना चाहिए ना, कृष्ण तो सबके लिए सम है तो सबको भक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए भक्ति देंगे दूसरे के लिए नहीं तो भगवान में तो वैषम्य दोष आ जाएगा ना। देखिए श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ आप लोग इसको पूरा कीजिए। सवई पुंसाम परो धर्म अब इसका अर्थ बतलाइए। सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षज, व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। भक्ति का परिचय दे रहे हैं अहैत तो की अप्रतिहता, क्या इसका अर्थ है? अहैत तो की और अप्रतिहता, हाँ बोलिए माइक लेकर के बोलिए।
अहेतुकी का अर्थ कि उसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य नहीं होना चाहिए,
हाँ।
बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता मतलब लगातार
लगातार। भक्ति के दो विशेषता है कि भक्ति के पीछे भक्ति के अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्य, और अप्रतिहता। जो नित्य भक्ति करते हैं, नियमित भक्ति करते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कुछ दिन भक्ति की और कुछ दिन बंद कर दिए, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह दो विशेषता है, लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ है। भक्ति का परिचय दे रहे हैं कि अहैतुकी, मतलब भक्ति का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है मतलब भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। हेतु मतलब कारण होता है, जो पहले आप अर्थ किए वो भी एकदम 100% सही है, लेकिन दूसरा अर्थ है कि भक्ति का दूसरा कारण नहीं है, भक्ति ही कारण है। तो इस अर्थ में इसको कह रहे हैं अहेतु की, और फिर अप्रतिहत। प्रतिहत समझते हैं ना, प्रतिहत, प्रतिहत का क्या अर्थ होगा? अरे उसके प्रयास को प्रतिहत कर दिया गया, रोक दिया गया। प्रतिहत मतलब उसको बाधित कर देना। तो अप्रतिहता का क्या अर्थ होगा? जिसको बाधित न किया जा सके। तो भक्ति का कारण केवल भक्ति है, कोई दूसरे कर्म से भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती, और कोई भी भौतिक परिस्थिति इसको दबा नहीं सकता। जैसे भगवान कहीं अवतार लेना चाहें तो कोई रोक सकता है, तो वैसे ही भक्ति कहीं भी प्रकट होना चाहे तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि काला शरीर है तो भक्ति नहीं प्रकाशित होगी। या बहुत विषयी है तो वहां भक्ति नहीं प्रकाशित होगी। या बहुत धनी व्यक्ति है तो वहां भक्ति नहीं प्रकाशित होगी। तो अब माइक आ गया, पूरा पैराग्राफ को पढ़िए, माइक पीछे बढ़ा दीजिए।
जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता।
हाँ, ये वाक्य को समझ रहे हैं ना? जब तक भक्ति का पीछे से कनेक्शन नहीं है तब तक भक्ति कोई ग्रहण नहीं कर सकता। चलिए
उदाहरणार्थ मान लीजिए मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है, यद्यपि सातत्य न भी रहे। और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रतिक्रियाओं के आदि हैं।
जो शास्त्र में रुचि रखता है, विश्वास रखता है, उत्तमत्व ज्ञान रखता है, तो उसको भक्ति का अधिकारी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। तो भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति को जन्म देने वाली भक्ति ही है, कोई दूसरा जन्म उसको नहीं दे सकता। हम पहले भक्ति किए हैं, कभी भक्ति किए हैं, तो वह अनुकूल परिस्थिति पा करके उभर आती है। अनुकूल परिस्थिति में भक्ति उभरती है। लेकिन अब एक प्रश्न है कि जो कभी भक्ति नहीं किया है, तब जब विगत जन्म में विगत भक्ति का ये परिणाम है, ये कोई विगत संबंध नहीं होता, जब तक विगत संबंध नहीं होगा तब तक व्यक्ति भक्ति ग्रहण ही नहीं कर सकता है। तो एक प्रश्न होगा ना कि जो पहले से भक्ति नहीं किया है तो वो तो भक्त नहीं हो सकता ना।
जैसे हरि नाम निकल रहे थे सुन लिया है, या फिर कोई साधु घर आ गया उसको पानी वानी पिला दिया।
हाँ, उसी को सुकृति कहते हैं। वो भी किसी न किसी रूप में भक्ति है, किसी तरह भक्ति से संयोग होने से। वो थोड़ा भी संयोग हो गया तब वह बढ़ेगी भक्ति, उतना पर ही नहीं रुकेगी, अनुकूल परिस्थिति पा करके बढ़ेगी। अभी मैं वो भी नहीं किया हो तो अरे वो भक्ति का एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, वो साधन भक्ति का एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए भक्ति का कारण केवल भक्ति है, लेकिन हमारा अपना भक्ति भी कारण हो सकता है और दूसरे के भक्ति भी कारण हो सकता है। हमारी अपनी भक्ति है तो वह तो कारण बनेंगे ही, और कदाचित अपनी भक्ति नहीं है, किसी साधु का संग हो गया तो उसके हृदय में भक्ति है ना, तो वह हमारे लिए भी काम करेगी, हमारे हृदय में भी भक्ति का जन्म हो जाएगा, लेकिन कारण भक्ति ही हुई। अहेतु की मतलब भक्ति के अतिरिक्त भक्ति का कोई दूसरा कारण नहीं है, तो इस सिद्धांत पर कोई अंतर नहीं पा रहा है, न चाहे अपना भक्ति काम करे या दूसरे की भक्ति। लेकिन अब भगवान को कारण मानेंगे तो भगवान को लोग गाली देने लगेंगे कि एक भक्त व्यक्ति को भक्ति दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। लेकिन भक्तों को कोई गाली नहीं देगा, भगवान तो क्लेम कर दिए हैं कि समूहम सर्वभूतान। लेकिन भक्त न अपने से क्लेम किए हैं, न दूसरे लोग भी किए, भक्त का लक्षण दिया गया है कि कृपा मैत्री उपेक्षा, वे किसी पर कृपा करते हैं, किसी से मैत्री रखते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं। भक्त का यही लक्षण है ना, कम से कम मध्यम अधिकारी का, मध्यम भक्त का तो यही लक्षण है। तो वे किसी पर कृपा कर दें तो कोई क्या गाली देगा, उनके तो स्वभाव में है। भक्ति के इस स्वभाव को समझना चाहिए कि भक्ति का कारण केवल भक्ति है, वो अपना भक्ति भी हो सकता है दूसरे भक्त का। और जो भक्ति के जन्म का कारण है वही भक्ति के वृद्धि का भी कारण है। अब ऐसा नहीं है कि हम भक्ति ग्रहण कर लिए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे लिए अब दूसरे भक्त का क्या महिमा है, अब तो हम भक्ति कर ही रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कोई उन्नत भक्त है, उसकी भक्ति बहुत उन्नत अवस्था में है, तो उसके संकल्प से हमारी भक्ति उन्नति को प्राप्त कर जाएगी। और अप्रतिहता, कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति को बाधित नहीं कर सकती। ये दो चीज समझना चाहिए। हाँ, इसका उत्तर दिया गया कि नहीं, कोई बतला सकता है? दिया गया, क्या उत्तर दिया गया बोल दीजिए, माइक माइक बोलो।
इसका उत्तर महाराज जी ये दिया गया कि भक्ति यदि हमारे पास नहीं है तो किसी जो भक्तों के पास भक्ति है उस भक्ति से भी हमको,
हमारे हृदय में भी भक्ति का संचार हो जाता है, वो कारण बन जाता है।
तो अब संगति ना की होगा भी साथ होगी,
हाँ तो उसका क्या होगा, जब तक साधु संग नहीं करेगा तब तक उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, तुम पूरा श्लोक बोलिए, ये सम पंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणा। हाँ,
करने से भक्ति की प्राप्ति हो
जाएगी? इसमें तो भक्ति के प्राप्ति के विषय में प्रश्न नहीं, तथ्य नहीं है ना, भक्ति के दृढ़ता के विषय में है। जेसम त्वंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम, और पुण्य कर्मणाम का अर्थ है वो भक्तों के कृपा ही, भक्तों के संग से जो संस्कार प्राप्त हुआ है तो वही पुण्य कर्म है, यज्ञ इत्यादि नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि इस सिद्धांत को न भी लें, यथाश्रुत अर्थ लें, तो जेसम त्वंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ प्रता। जब तक पाप समाप्त नहीं होगा तब तक भक्ति में स्थिरता नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी। इसी से भक्ति में दृढ़ता के लिए भक्त लोग किसी भी प्रकार के हिंसा इत्यादि से पूरा बचते हैं। तो इसमें दृढ़ता की बात कही जा रही है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन पुण्य कर्मणाम का अर्थ भी किया गया है, तो भक्ति के संस्कार को ही ग्रहण किया गया है। ये बहुत प्रचलित बात है ना, पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्या न सुहा। एक प्रश्न कई एक लोग करते हैं, महाराज हमको कथा में बहुत नींद आती है, तो कई एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कारण है कोई पाप किए है। वैसे कब्ज इत्यादि से भी नींद आता है, रात को बहुत जगे हैं उससे भी नींद आ जाती है, रुचि नहीं है उससे भी, लेकिन बहुत प्रसिद्ध बात है कि पाप से व्यक्ति भक्ति से विचलित होने लगता है। और भक्ति का कारण भक्ति ही है, वो अपनी भक्ति भी हो सकती है और दूसरे भक्त के हृदय की भक्ति भी हो सकती है। तो यह भक्ति के विषय में है। अब भक्ति का तीन भेद का उल्लेख किया गया था, भक्ति के गुण पढ़ रहे थे, तो दो भक्ति साधन, दो गुण साधन भक्ति के हैं और दो प्लस दो चार गुण भाव भक्ति के, और चार प्लस दो छह गुण प्रेम भक्ति के। श्रीनिवास जी गणित कठिन पड़ रहा है? अभी मोदी जी तो सब बटम पर ही काम कराना चाहते हैं, तो इतना तो डिजिट का ज्ञान रखना होगा ना। अब साधन भक्ति क्या है, भक्ति का तीन विभाग किया जा रहा है, तो साधन भक्ति किसको कहते हैं? अपने इंद्रियों को माइक 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 दीजिए, माइक दीजिए,
अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए उसको साधन।
अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए हैं तो इसको साधन भक्ति कहते हैं। बात ठीक है, लेकिन यही कारण है कि मैं संस्कृत श्लोक को महत्व दे रहा हूं। क्योंकि आप तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी तो पूरा पैराग्राफ तो पढ़ी नहीं, ने पढ़ी है लेकिन पूरा ग्राफ पूरा पैराग्राफ को रिलेट नहीं कर पाए। एक लाइन में ये दिया गया है तो इसको आप ग्रहण कर लें, ठीक है। लेकिन अब आप लोग एक श्लोक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कभी कभी साधन भक्ति की परिभाषा परीक्षा में पूछ देते हैं। पिछले बार अंग्रेजी बैच का मैं कॉपी देखा था, इस प्रश्न का उत्तर लगता है कि एक कैंडिडेट ठीक से दिया होगा, नहीं तो सब लोग भूल किए थे। वो एक अंश तो यह ठीक है, अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। अच्छा मान लीजिए, पहले इसके पहले आप ध्यान दीजिए कि यह जो भेद किया जा रहा है, साधन भक्ति भाव भक्ति ये प्रेम भक्ति, वो किस भक्ति का भेद किया जा रहा है? उत्तमा भक्ति का। तो मान लीजिए कि नौकरी प्राप्त करने के लिए या सीधे पैसा प्राप्त करने के लिए हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमको कुछ पैसा मिल जाए, परिवार का भरण पोषण करें, तो उसको साधन भक्ति कहा जाएगा ना आपके परिभाषा के अनुसार? और तो साध्या देखिए, एक अंश तो आप ठीक बोल दी, लेकिन दूसरा अंश है साध्य भावा। भक्ति साधन भक्ति के दो पक्ष हैं, कि अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, इंद्रियों से भक्ति करनी है, और उसका उद्देश्य भाव भक्ति। भाव भक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं तब उसको उत्तमा भक्ति है ही नहीं है, फिर साधन भाव किसी में उसको डाल ही नहीं सकते। तो भाव भक्ति के प्राप्ति के लिए अपने इंद्रियों से कृष्ण का अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा साधन भक्ति। आरती खूब ढंग से कर रहे हैं, जय जगदीश हरे और दुख मीठे सुख संपद आवे, भक्ति तो है लेकिन यह साधन भक्ति नहीं है। भाव भक्ति के प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसी का नाम साधन भक्ति है। तब तो उन्हें भक्ति का लक्ष्य भाव है, भाव प्राप्त करना है, तो भक्ति से कुछ अलग चीज हो गया ना भाव, भाई एक साधन हुआ एक साध्य हो गया। जैसे नौकरी करते हैं तो उसे पैसा मिल जाता है या सुविधा मिल जाती है, तो हम नौकरी करते हैं तो पैसा कौन देता है, जिस कंपनी में नौकरी करते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं साधन भक्ति, तो भाव भक्ति कहाँ से आएगा है? तो जैसे दूसरे कार्य में साधन और साध्य है तो उस अर्थ में यहाँ नहीं है। इसी से दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। दूसरे जगह साध्य है वो बाहर से आता है, नौकरी हम कर रहे हैं पैसा कहीं दूसरे जगह से आएगा, लेकिन भाव भक्ति के साथ यह सिद्धांत नहीं है। वो कहीं बाहर से भाव भक्ति नहीं आएगा, नित्य सिद्धस्य भावस्य, वह भाव हमारे हृदय में नित्य सिद्ध है, वही प्रकट हो जाना, इसी को साध्यता कह रहे हैं। भाव भक्ति साध्य है इसका इतना ही अर्थ है कि हृदय में उसको प्रकाशित करना है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। हमारी बात को समझ रहे हैं? कृष्ण स्वरूप कुछ कठिनाई है? कठिनाई को लिखते चलिए, क्या कठिनाई आ रही है उसका बाद में समाधान कर दिया जाएगा। तो दो चीज है ध्यान में रखना है कि साधन भक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों से व्यापक अर्थ में मन वचन शरीर इसे संपादित किया जाता है और उसका लक्ष्य भाव भक्ति है, लेकिन भाव भक्ति कहीं बाहर से नहीं आता है। जो नित्य सिद्ध हृदय में है, नित्य सिद्ध भाव हृदय में प्रकाशित हो जाना, इसी को साध्यता कह रहे हैं, यही साध्य है। और इसके लिए दो उदाहरण दिया गया है, एक बच्चे के चलने का अभ्यास और दूसरा मनोचिकित्सक का निर्देश। देखिए कोई बच्चा है वो प्रारंभ में वो खड़ा ही नहीं हो पाता है, सोए रहता है बैठता है, लेकिन माता पिता थोड़ा उसे अभ्यास कराते हैं, थोड़ा सहारा देते हैं तो चलने लगता है। अब यह बतलाइए कि बच्चे में जो चलने की क्षमता है वो पहले से थी कि माता पिता लोग डाल दिए? पहले से थी, माता पिता अभ्यास करके डाल देते तब तो कितने लोग उड़ने का अभ्यास करा देते बच्चे को थोड़ा अभ्यास करा करके उड़ा नहीं देंगे ना? तो पक्षी में उड़ने की क्षमता है, मनुष्य का बालक है तो उसमें उड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन चलने की क्षमता है, प्रसुप्तावस्था में है, थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं तो चलने के योग्यता आ जाती है, चलने लगता है। तो जैसे बच्चे में चलने की क्षमता सन्निहित है, वैसे ही भाव भक्ति हमारे हृदय में प्रसुप्तावस्था में पहले से ही है, साधन करने से वो प्रकट हो जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चे के चलने के उदाहरण को स्पष्ट कीजिए, तो कुछ लोग खूब लिखते हैं कि बच्चे को थोड़ा अभ्यास कराएंगे तो चलने लगेगा सब, लेकिन ये उदाहरण दिया गया किसी बात को समझाने के लिए ना, जब तक उस बात को नहीं लिखेंगे तब तक वो नंबर उम्बर नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन पर समझ रहे हैं ना किस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया गया, जैसे बच्चे में चलने की क्षमता पहले से निहित है, थोड़ा अभ्यास कराने से प्रकट हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के प्रति प्रेम या भाव हमारे हृदय में पहले से सन्निहित है, वो प्रसुप्तावस्था में है, साधन भक्ति करने से जागृत हो जाता है। कोई व्यक्ति ठीक ठाक अपना काम कर रहा है और तब तक कुछ दिन के बाद वो अकबक करने लगता है, तो डॉक्टर उसको कुछ निर्देश देता है या कभी कभी दवा भी देता है, तो फिर सामान्य रूप में हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग जितने बैठे हैं वो सब पागल के समान हो गए हैं, यह मत समझिए कि सामान्य लोग बैठे हैं, साधन भक्ति करेंगे तब नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। अभी तो एक पागल पढ़ा रहा है और एक पागल पढ़ रहा है। जब भाव भक्ति प्रकट हो जाए तो समझना चाहिए कि हाँ अब नॉर्मल कंडीशन में आए। हाँ, और वह प्रकट होगा साधन करने, साधन भक्ति करने से। जैसे डॉक्टर का निर्देश कोई रोगी पालन करे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा, सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो साधन भक्ति दिया गया है उसका अभ्यास हम करेंगे तो भाव भक्ति प्रकट हो जाएगा, तब माना जाएगा कि हम अब सामान्य स्थिति में आ गए, अभी पागल की स्थिति में है। समझ रहे हैं इस उदाहरण को? इस उदाहरण में किसी को कुछ कठिनाई आ रही है? रक्षक समझ में आप आए? हम जो नोट्स बनाए थे तो उधर ही रूम में छूट गया, तो उससे खैर बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये समझ गए ना, साधन भक्ति की परिभाषा या एक महत्वपूर्ण चीज है। अब भक्ति या साधन भक्ति भी दो प्रकार का है, साधन भक्ति के दो भेद हैं, उसको निकालो। साधन भक्ति का एक को कहते हैं वैधि भक्ति और एक को रागानुगा। श्रीनिवास जी अभी 6 का गणित नहीं, 64 का गणित, भाई गणित। इसको आए श्लोक तो मिल जाएगा, श्लोक में तो कोई नहीं। अब कृष्ण स्वरूप ऑब्जेक्शन कर रहा है ना कि संस्कृत में पढ़ाई हो रही है, अब हिंदी में होगी। हाँ, तो किताब से आप समझते रहिए, किताब तो है मार्केट में ना। इसको आप लोग खूब अच्छा से लिख लीजिए या फोटो खींच लीजिए, जो करना हो। और इसमें आप क्या देख रहे हैं? साधन भक्ति। साधन भक्ति का दो भेद कौन कौन? वैधि और रागानुगा। और फिर वैधि भक्ति का भी विभाजन किया गया है। अब उस स्टेप को मैं नहीं लिखा हूं, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो प्रारंभिक भक्ति और अन्य भक्ति। वो प्रारंभ या प्रारंभिक भक्ति के दो भेद, दस निवृत्ति और दस प्रवृत्ति और दस निवृत्ति। साधन भक्ति लाखों प्रकार का है, लेकिन रूप गोस्वामी उसको 64 भाग में ग्रहण किए। सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं हरि भक्ति विलास, तो उसमें लाखों प्रकार के साधन भक्ति का उल्लेख है, लेकिन उसी को समराइज करके रूप गोस्वामी 64 भाग में विभक्त किए। तो 64 भाग में 20 का एक ग्रुप है, और 20 घटा देंगे 64 से तो कितना बचेगा, 44। तो 44 को अन्य कहा गया है। अब 20 का भी दो भाग किया गया है, एक को कहते हैं प्रवृत्ति और एक को निवृत्ति। तो 10 प्रवृत्ति है और 10 निवृत्ति है और 44 अन्य। तो जो प्रारंभिक भक्ति है और इसकी संख्या कितनी है, 20, 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति। लेकिन इस 20 में भी जो शुरू के 3 हैं, ये माइक का रहा है क्या, ये प्रारंभिक 3 जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें 2 शब्द है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली, और इसमें अंतर को समझना चाहिए। तो जो प्रारंभिक भक्ति है उसमें 10 प्रवृत्ति है, और उसमें जो शुरू के 3 है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जो निवृत्ति है तो भक्ति के उत्थान के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसका त्याग करना, उसका त्याग नहीं करेंगे भक्ति कुंठित हो जाएगी। और 44 अन्य साधन भक्ति है, तो उसमें 5 भक्ति को बहुत प्रबल बतलाया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे उस साधन भक्ति का एक प्रारूप आ रहा है। पहले 2 भेद किया गया, वैधि और रागानुगा, फिर वैधि का भी भेद किया गया, 10 प्रवृत्ति, 10 निवृत्ति और 44 अन्य। तो ये तो एक ग्राफ खींच देने से बहुत सुविधा है, अभी इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है वर्गीकरण में ना। तो अब एक एक की परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे कि वैधि भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है। वैधि भक्ति की परिभाषा कौन देगा, बोलिए। हाँ माइक ले लीजिए, माइक दीजिए पीछे।
गुरु या वैष्णव के निर्देशन में साधना भक्ति को संपन्न करने की क्रिया को वैधि भक्ति कहते हैं।
गुरु और
वैष्णव आचार्य जो है,
वैष्णव के
निर्देशन में भक्ति की क्रियाओं को संपन्न करने को वैधि भक्ति,
वैधि भक्ति कहते हैं, ठीक। और रागानुगा
मतलब भक्ति क्रियाओं में
गुरु और वैष्णव के निर्देश का उल्लंघन करना रागानुगा भक्ति है।
स्वतः ही जैसे उससे जो है वो निर्देश की जरूरत नहीं, स्वतः ही वो आ गया,
आए
स्वभाव में आ गया, नेचुरली वो मंगल आरती जाने लगा, अभी किसी को निर्देशन जाने की जरूरत नहीं।
हाँ ठीक है।
तो प्रारंभिक बोला था, क्या बोला था साथ में? प्रारंभिक के साथ बोला था।
प्रारंभिक का दो खंड कर रहे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। लेकिन प्रवृत्ति के जो शुरू के तीन हैं तो वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। साधना भक्ति में नहीं बोला, साधना भक्ति का दो भाग, वैधि और रागानुगा। अभी नहीं बतलाएंगे, जब उसका नंबर आएगा तब बतलाएंगे ना। वो रागानुगा भक्ति, इसका विच्छेद कौन करेगा? रागानुगा का बोलिए, राग अनुगा। तो अनुगा का क्या अर्थ होगा? पीछे चलने वाली, पीछे चलने वाली भक्ति स्त्रीलिंग है ना। किसके पीछे चलने वाली? राग। वो राग क्या होता है? वो राग के पीछे चलने वाली है। तो पहले राग को समझेंगे तब पता चलेगा ना। विषयों के प्रति जो स्वाभाविक झुकाव है उसको राग कहेंगे। वो उदाहरण है तो इस स्तर से चलना होगा ना कि जिसका अनुभव आप कुछ किए हो। किसी का है अनुभव कि विषय के प्रति कैसा झुकाव है? दो लोगों का अनुभव है। अरे ये पूछने वाला प्रश्न ही नहीं है। ये भी पूछने की बात है। विषय के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है उसको राग कहा जाता है। तो किसी इंद्रिय के जो विषय है तो स्वाभाविक आकर्षण है। पनीर का पकौड़ी। या और इसको मैंने स्पष्ट अनुभव करना चाहे, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है इसको राग कहेंगे। और यही जिसका स्वरूप है ऐसा ही राग से ही बना है तो उसको कहा जाएगा रागात्मिका। जैसे विषय के प्रति आकर्षण है हम लोगों का, तो कुछ लोगों का वैसा ही आकर्षण कृष्ण के प्रति है। तो उस भक्ति को रागात्मिका कहते हैं, एकदम राग पर आधारित है। लेकिन वह भक्ति तो केवल ब्रजवासियों में प्रचलित है, लेकिन उस भक्ति का जो अनुगमन करता है उसको कहा जाएगा रागानुगा भक्ति। राग भक्ति का जो अनुगमन कर रहा है तो उसको कहा जाएगा रागानुगा। अब वैधि भक्ति, यत्र रागा यत्र राग अनवाप्ता प्रवृत्ति रूप जायते शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति रुच्यते। करें कि अभी भक्ति में राग उत्पन्न नहीं हुआ है, राग उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन जो शास्त्र के शासन से ही, शब्द पर ध्यान दीजिए, शास्त्र के शासन से, ऐसा नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के शासन से ही प्रवृत्ति रूप जायते, एक भक्ति की प्रवृत्ति आ जाए, तो इसको वैधि भक्ति कहेंगे। तो इससे ध्वनि है कि रागानुगा भक्ति में भी शास्त्र का शासन है। मैं अंतर किस पॉइंट पर कर रहा हूं, शासनेन एव, शासन से ही, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शासन से, शासन से ही। तो इसमें वैधि भक्ति में शासन ही नियंत्रक है, और रागानुगा में राग और प्लस शासन दोनों। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि रागानुगा में शासन नहीं है, वहां भी शासन है, लेकिन केवल शासन पर वो आधारित नहीं है, राग और शासन दोनों है। और वैधि भक्ति केवल शासन पर आधारित है, समझ रहे हैं अंतर? तो संस्कृत से बहुत आसान होता है, यत्र रागा नवाप तत्वा प्रवृत्ति रूप जायते शासने नैव शास्त्रस्य सा भक्ति सा वैधि भक्ति रुच्यते। केवल शास्त्र के शासन से, जो गुरु वैष्णव है तो शास्त्र की बात कहते हैं ना, मूल शास्त्र ही है। ये एक दिन, अब इस पर भी डिबेट की इच्छा है, वो तीन का झगड़ा चलता है ना, साधु शास्त्र और गुरु, तो एक दिन यहां भी झगड़ा हो जाए। तो जो शास्त्र के शासन से ही नियंत्रित है, उसके चलते भक्ति करते हैं, तो उसको कहेंगे वैधि भक्ति। तो शास्त्र में भजन करने का शासन कहीं है, कहीं व्यवस्था है, निर्देश है, बोल सकते हैं कोई श्लोक शास्त्र की बात? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान निस्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भजन। प्रश्न किया गया है कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और श्रीमद् भागवतम यही निर्देश दे रहा है कि सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। ये भगवान के लिए कितना शब्द इस श्लोक में दे रहे हैं, तीन नहीं और बढ़ाइए थोड़ा बढ़ा करके चार। ते शासन को दिखा रहे हैं, भजनीय गुण को दिखा रहे हैं, सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब अतिशय भगवान, वो भगवान है, मतलब सदैश्वर पूर्ण है। अरे तो भगवान होने से क्या हुआ, वो कितने लोगों के पास तो बहुत धन है, बहुत संपदा है, लेकिन उनके नजदीक जाने की इच्छा ही नहीं होगी, भय लगेगा, ऐसा आप देखते हैं ना। लेकिन भगवान सदैश्वर पूर्ण है, लेकिन सर्वात्मा सबके प्रिय है, आत्मा मतलब प्रिय। तो जैसे माता पिता से बच्चे को कोई संपर्क करने में कोई संकोच नहीं है, कभी भी संपर्क कर सकता है, तो वैसे भगवान सबके प्रिय हैं, उनके भजन में कोई कठिनाई नहीं, और हरि हैं, वो बहुत आकर्षक हैं, दुख को हरण करने वाले। इसके साथ ही ईश्वर है। ये भक्ति करना ऑप्शनल नहीं है कि इच्छा हुई तो करें, ना इच्छा हुई तो। ईश्वर नहीं करने पर दंड भी देंगे। इसलिए उनका स्मरण करना चाहिए। शास्त्र में जो भी शासन दिया गया है, बहुत बहुत शासन है, लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य दो चीज है। गवर्निंग फैक्टर दो है, वो क्या है निकालो। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधा स्यु ए तयो रेव किंकर। शास्त्र में जो भी निर्देश है, जो भी शासन किया गया है, उसका उद्देश्य दो है। क्या उद्देश्य है? कि भगवान विष्णु का सतत स्मरण करना और उनका विस्मरण कभी न करना। सारे शास्त्र का मुख्य चीज यही है। इसी के नीचे, इसी के किंकर के रूप में, सेवक के रूप में और जितने भी निर्देश हैं, मुख्य निर्देश दो, कौन कौन? ओ, शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि भगवान भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है या दो श्लोक कह सकते हैं कि मुख बाहुर उपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमय सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर विप्रादयः पृथक। कह रहे हैं कि पुरुषस्य भगवान के मुख बाहु जांघ और पद से ये वर्ण और आश्रम उत्पन्न हुआ है और ये सम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव मिश्वरम। जो व्यक्ति इस पुरुष का, जिनके विषय में कह रहे हैं कि आत्म प्रभवम, जो हमारा जन्मदाता है और ईश्वर हमारा नियामक है, न भजन्ति भजन नहीं करता है, अवजानन्ति अवमानना करता है, तो स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः, वह अपने स्थान से च्युत होकर के नीचे गिर जाता है, वर्णाश्रम से च्युत होकर के अधम जोनी में चला जाता है। वो भगवान का भजन करना अति आवश्यक है। हमारे मन के ऊपर नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है कि भक्ति करें या न करें। भक्ति करेंगे तो हमको इस लोक में या परलोक में जो इच्छा है वो उसका लाभ मिल जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। एवं क्रिया जोग पथे पुमान वैदिक तंत्र कई अर्चन उभयतः सिद्धि मत्तो विद्यन्ते अभिप्सता। कि जो व्यक्ति हमारी भक्ति करता है, अर्चना करता है, तो चाहे इस लोक में कुछ चाह रहा है या परलोक में कुछ चाह रहा है, भजन करने के प्रभाव से वो दोनों प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो अपने स्थान से च्युत होकर के नीचे गिर जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो या किसी भी आश्रम का। भक्ति नहीं करेगा तो उसका अधःपतन होगा, क्योंकि भगवान का अपमान कर रहा है। श्लोक में आप देख रहे हैं कि न भजन्ति अवजानन्ति, तो ऐसा लग रहा है कि भजन नहीं कर रहा है, भगवान का अपमान कर रहा है, तो नीचे गिर जाएगा। तो दो क्रिया नहीं है, न भजन्ति भगवान का भजन न करना, यही भगवान का अपमान है। ये भजन न करना अपने आप में अपमान है। मान लीजिए कि आपके क्लास में आपके गुरु जी आ गए, दीक्षा गुरु आ गए, या कहीं बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, और आप खड़ा नहीं हुए, तो अपमान कर रहे हैं कि नहीं? उनको नमस्कार नहीं किए तो अपमान कर रहे हैं कि नहीं? अपमान है ना। अब कोई कहे कि हम तो कुछ अपमान नहीं किए, हम तो चुपचाप बैठे थे, हम तो कुछ नहीं किए। अरे कैसे आप लोग अपमान मान रहे हैं? भाई गुरु का यह पोजीशन है कि आने पर सम्मान करना चाहिए, और सम्मान नहीं कर रहे हैं तो यही अपमान है। तो उसी तरह कृष्ण का भजन न करना ये अपने आप में अपमान है, ये समझना चाहिए। न भजन्ति मतलब अवजानन्ति, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव परिमजे। अपना कर्म कर रहा है, ब्राह्मण है, वेद पाठ कर रहा है, या और भी कुछ कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, नरक में जाना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भक्ति आवश्यक है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, वो सबके लिए भक्ति आवश्यक। भक्ति नहीं करेगा तो उसका पोजीशन खत्म हो जाएगा। मनुष्य जीवन उसको नहीं मिलेगा, आगे कुकर सुकर या नरक में डाल दिया जाएगा। तो भजन सबके लिए अति आवश्यक है। और जो व्यक्ति भजन करता है तो चाहे इस लोक में की कुछ कामना है या दूसरे लोक में कामना है, और उसकी पूर्ति हो जाती है, तो बेवकूफ व्यक्ति भजन नहीं करेगा। भाई जब दोनों तरफ इसमें फायदा ही है तो भजन क्यों नहीं करेंगे? अब एक प्रश्न होगा कि भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी कौन है? देखिए, भक्ति के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। अब एकदम श्रद्धा शून्य है तो भले ही भक्ति का अधिकारी न हो, लेकिन थोड़ा भी स्वल्पापी थोड़ी भी श्रद्धा है तो भक्ति का अधिकारी है। लेकिन ये भक्ति का अधिकार निर्धारित होता है श्रद्धा के अनुरूप ही। जितनी अधिक श्रद्धा है तो उतना उन्नत अधिकारी है, और वह भक्ति में बहुत विकास करेगा। तो भक्ति के अधिकारी का वर्गीकरण श्रद्धा के अनुसार किया गया है। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुरूप वो भक्ति के अधिकारी है। तो एक तो यह सिद्धांत है श्रद्धा के अनुसार। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे अच्छा भक्ति का अधिकारी वह व्यक्ति है ना तिशक्तो न वैराग्य भाग, बहुत वैरागी नहीं है और बहुत आसक्त नहीं है, तो भक्ति के लिए सबसे अच्छा है। यह केना प्रतिभाग्ये न जात श्रद्धोस्य सेवने, कि किसी भाग्य से, किसी भाग्य से मतलब कि कैसे भी उसको साधु का संग हो गया है, कुछ भक्ति का संस्कार आ गया। भाग्य का अर्थ यही लेना चाहिए कि किसी तरह वो भगवान की या भक्त की सेवा पहले कर चुका है, थोड़ा भी किया है तो वो संस्कार आ जाता है। जैसे अभी ध्रुव बतला रहे थे कि मान लीजिए कि हरिनाम जा रहा है, केवल दर्शन कर लिया, कोई उत्सव जा रहा है तो उत्सव का दर्शन करना भी भक्ति है, साधन भक्ति है। वो केवल दर्शन कर लिया तो कुछ भक्ति उसका हो गया, उसका संस्कार आ जाएगा। या मान लीजिए कि एकदम वो भौतिक आदमी है, संसारिक व्यक्ति है, लेकिन अपने पारिवारिक संस्कार से या अपने नम्रता से किसी साधु की थोड़ी सी सेवा कर दिया, केवल बस नंबर बतला दिया जुहू के लिए कौन बस जाते हैं, तो वह भी अब उसका भाग्य का उदय हो गया, भक्ति का संस्कार पड़ गया। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग तो अपने से बतला देते हैं, वो भक्त नहीं है, संसारी आदमी है, लेकिन परेशानी देख करके अपने से बतला देते हैं, स्वामी जी इस नंबर का बस पकड़ लीजिए, ये पूछने पर बतला देते हैं। वो किसी तरह भक्त का उसको संयोग हुआ है तो वह भक्ति का संस्कार उत्पन्न हो जाता है, इसी को भाग्य कहा गया है। तो जात श्रद्धा सेवन है, अब भक्ति के प्रति उसकी थोड़ी सी श्रद्धा हो गई है, और दो चीज कह रहे हैं, नाति सक्तो, वो बहुत आसक्त नहीं है। आसक्ति भक्ति से वंचित नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह रहे हैं कि अति आसक्त नहीं होना चाहिए। भाई अति का सीमा क्या निर्धारित करेंगे, भाई इतना आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि अब मंदिर में जाने का एकदम फुर्सत ही न मिले। आसक्त हैं लेकिन साधुओं की टोली में या कहीं जाने के लिए थोड़ा भी अवकाश है तो उसको अब अति आसक्त से बाहर ही गिन लिया जाए। अति आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि एकदम थोड़ा भी भक्ति के लिए अवकाश ही नहीं है, कुछ मुख मोड़ने का अवकाश ही नहीं है। अगर थोड़ा सा तो विरति रहेगी, वैराग्य रहेगा, तभी उधर से अपने मुख को मोड़ेंगे ना, तो इतना है और न वैराग्य भाग, क्यों बहुत फल्गु वैराग्य को धारण नहीं किया गया, तो यह वह व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। इसी को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदिच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्त यह पुमा न निर्वीणो नाति शक्ति नाति शक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिद। जो व्यक्ति बहुत आसक्त नहीं है और बहुत उदासीन नहीं है तो वह व्यक्ति भक्ति के लिए बहुत अच्छा अधिकारी माना जाता है। अब बहुत आसक्त है तो कर्मयोग का अधिकारी है, और बहुत उदासीन है तो ज्ञान योग का अधिकारी है, लेकिन बीच का है तो भक्ति योग के लिए बहुत अच्छा पड़ता है। तो श्रद्धा के अनुसार ही अधिकार का निर्णय किया जाता है। तो आप पहले सुन चुके हैं कि स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका, थोड़ी भी श्रद्धा है तो भक्ति तत्व को ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। और युक्ति तो केवला नहीं, वह केवल युक्ति है तो उसे भक्ति को नहीं समझ सकता, लेकिन श्रद्धा भी है और युक्ति भी है तो वह भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कह रहे हैं कि शास्त्रे युक्तौ च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी स भक्तौ उत्तम मत। कह रहे हैं कि शास्त्र में वह निपुण है और तर्क में भी निपुण है और सर्वथा दृढ़ निश्चय। अब भाई शास्त्र में वो निपुण है, तर्क में निपुण है, तब तो इतना निर्धारित कर लिया है कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और प्रौढ़ श्रद्धा, इस प्रकार की श्रद्धा उसकी जमी हुई है तो तो स यह स भक्त अनुत्तमो मत, वह भक्ति का सबसे श्रेष्ठ अधिकारी है। श्रद्धा के अनुसार भक्ति के अधिकारी का निर्धारण होता है। श्रद्धा का न्यूनतम बिंदु है शास्त्र में विश्वास होना चाहिए, और जो प्रौढ़ श्रद्धा श्रद्धावान है, जिसकी श्रद्धा जम चुकी है, और उसका लक्षण है कि श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। जब उसके मन में यह बैठ गया है कि भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाएगा, और उसको रियल सेंस में श्रद्धालु कहा जाएगा। देखिए, श्रद्धा आवश्यक है भक्ति के लिए, और जैसा मैं बतलाया कि न्यूनतम बिंदु है कि कुछ विश्वास होना चाहिए शास्त्र वचन में, शास्त्र के प्रति, शास्त्र के वचन में विश्वास होना चाहिए। और श्रद्धा का उन्नत अवस्था है कि वह लक्ष्य का विचार नहीं करता है, साधन में लगे रहता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे स्वर्ण लिप्सु है, लिप्सु माने श्रीनिवास, लिप्सु का क्या अर्थ होता है, स्वर्ण लिप्सु, लोभी, लिप्सा मतलब लोभ, इच्छा। जो सोना प्राप्त करना चाहता है तो सोना खोजता रहता है। अब सोना किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं भी मिलता है, लेकिन खोजना नहीं बंद करेगा। अब सोना खोजने वालों को तो आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग पैसा खोजने वाले को देखे हैं ना, वो जमुना जी में चुंबक डालते हैं रस्सी में बांध करके, तो कभी एक रुपया आ जाता है, कभी दो का सिक्का आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन वो डालते रहते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कुछ सिक्का खोजने वाले, वो डुबकी लगाते हैं, चुंबक डालते हैं। बनारस हम लोग देखे कि बहुत से लोग डूब डूब करके उसी में खोज रहे हैं, कभी एक आध रुपया मिल जाता था, कभी नहीं मिलता है। इसी तरह कहीं कहीं नदी में सोना मिल जाता है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम सुने हैं, बंगाल और झारखंड या बिहार का बॉर्डर शायद है, तो आज भी वहां कभी कभी सोने का टुकड़ा मिल जाता है। तो जो सोना खोजने वाले हैं वो सुबह ही निकले, वो दिन भर खोजते रहते हैं। अब दिन भर सोना नहीं मिला, फिर भी दूसरे दिन से बंद नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे, किसी दिन मिल भी जाता है। तो जब स्वर्ण लिप्सु के समान साधन में लगे रहे, सिद्धि मिले न मिले इससे कोई अंतर ना हो, तब उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि हाँ, इसकी भक्ति में श्रद्धा है। सिद्धि असिद्धि पर न विचार करके साधन भक्ति में लगा हुआ है, वह सच्चा श्रद्धालु है। वो जितनी श्रद्धा है उसके अनुरूप वो भक्ति का अधिकारी है। तो प्रौढ़ श्रद्धा, खूब जमी हुई श्रद्धा है, तो फर्स्ट क्लास अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। और श्रद्धा भी उतनी जमी नहीं है, और शास्त्र का भी उतना ज्ञान नहीं है, तो उसको मध्यम अधिकारी कहा जाएगा। नहीं, श्रद्धा है उसको, श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र का उतना जानकारी नहीं है। अपने लिए तो निर्धारित कर लिया है कि भगवान का भक्ति श्रेष्ठ है, उससे इधर उधर नहीं हो सकता, लेकिन अब दूसरे के लिए स्थापित नहीं कर सकता। कोई कुछ इसके खिलाफ तर्क दे रहा है तो उस तर्क को खंडित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अपने लिए कि कृष्ण का भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, इस विषय में एकदम दृढ़ निश्चय उसका है, तो ऐसे अधिकारी को मध्यम कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को मध्यम अधिकारी कहा जाएगा। और जिसकी श्रद्धा अभी कोमल है, अब कुछ कह करके वो कृष्ण भक्ति से विचलित भी व्यक्ति कर सकता है, तो उस व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। और भक्ति में अधिकार सबका है, लेकिन भक्ति में विकास करेगा श्रद्धा के अनुसार, जैसी श्रद्धा है उसी के अनुसार भक्ति में विकास कर पाएगा। लेकिन अब यह बात है कि श्रद्धा को बढ़ाया जा सकता है, नहीं श्रद्धा है फिर भी उसमें श्रद्धा डाला जा सकता है, और कम श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को बढ़ाया जा सकता है। तो भक्ति का उत्तम अधिकारी भी हो सकता है, कनिष्ठ अधिकारी भी श्रद्धा बढ़ जाने से उत्तम अधिकारी हो सकता है। जब भक्ति के विषय में एक दो और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भक्ति का त्याग कर रहे हैं तो यह दंडनीय अपराध है, उसका दंड मिलेगा ही। लेकिन आपका कोई कर्तव्य है, कोई वर्ण आश्रम के अनुसार आपका कर्तव्य है, धर्म है, उसका त्याग कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं तो आप दोषी नहीं है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्वत पतेत यदु यदि। एक तो वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिए और भजन करने लगे और भक्ति में भी सिद्धि नहीं मिली, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं। अरे अपने स्वधर्म का पालन करके आप क्या लाभ प्राप्त कर लेते, और भक्ति में सिद्धि भी न मिली, अब पतित भी हो गए, तो इसे क्या भारी हानि हो गया। अभी बतला रहे थे ना प्रभु जी के जितना किए हैं तो उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, कोई बहुत भारी क्षति तो नहीं है। वो भक्ति का त्याग कर रहे हैं तो बहुत भारी दोष है, सबसे बड़ा पाप यही है। और अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके और भक्ति कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। और अब मान लीजिए कि भक्ति कर रहे हैं और कोई पाप हो गया, कोई विकर्म हो गया, तब क्या करें, प्रायश्चित करें। जो व्यक्ति साधन भक्ति में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि विकर्म से दूर रहेगा, उसका ऐसा जीवन होता है कि पाप से दूर हो जाता है। लेकिन कदाचित कोई पाप उससे बन गया है तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन तो यही है, अब इसको छोड़ करके कौन साधन अपनाएंगे। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है और उससे कोई पाप हो गया तो भगवान के नाम से बढ़ करके कौन साधन है कि उसको शुद्ध करेगा। तो इसी से भक्ति, साधन भक्ति में जो संलग्न है तो कदाचित कुछ विकर्म भी बन जाए तो अलग से प्रायश्चित का विधान नहीं है। क्योंकि भक्ति से बढ़ करके पाप को मार्जन करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है, तो कोई औचित्य ही नहीं है कि दूसरे साधन का अनुष्ठान करें। और अब पाप कदाचित बन गया किसी बहुत बुरे संस्कार बस तो उसको भगवान शुद्ध कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्च पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। कह रहे हैं कि स्वपाद मूलम भजतः त्यक्तान्य भावस्य, जो दूसरे साधन का अवलंबन छोड़ करके, आश्रय छोड़ करके, या दूसरे व्यक्ति का, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, भूत हो, पिशाच हो, उसका अवलंबन छोड़ करके, त्यक्तान्य भावस्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के पांचवें अध्याय का है। करभाजन जी की उक्ति है, इसको समझिए ठीक से। त्यक्तान्य भावस्य, शर्त एक डाल रहे कि किसी देवी देवता नेता परेता भूत प्रेत का आश्रय नहीं लिया। योग सांख्य ज्ञान वैराग्य और किसी का साधा आश्रय नहीं लिया। त्यक्तान्य भावस्य, स्वपाद मूलम भजत, भगवान के चरण का भजन कर रहा है, तो वह व्यक्ति बहुत प्रिय होता है भगवान को। दूसरे का आश्रय रखे हैं तो भगवान को उतना प्रिय नहीं है, लेकिन जो दूसरे का आश्रय का पूरा पूरा त्याग कर दिया है, त्यक्तान्य भावस्य, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, केवल भगवान के आश्रित उन्हीं का भजन कर रहा है, तो भगवान को बहुत प्रिय है। तो विकर्म यच पतितम कथंचित, शब्द पर ध्यान देना चाहिए। कदाचित किसी पूर्व संस्कार से उसे विकर्म बन जाए, ऐसा नहीं कि भजन कर रहा है और रोज पाप किए जा रहा है, उसके लिए नहीं कह रहा है। विकर्म यच पतितम कथंचित, किसी विशेष स्थिति में उससे कुछ विकर्म हो गया तो धुनोति सर्व, उस विकर्म को भगवान धुन देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हृदय में है, अलग से कुछ प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, धुनोति सर्व। कभी कभी देखा जाता है कि जो बड़े निष्ठ भक्त हैं तो उनके जीवन में भी विकर्म हो जाता है, क्योंकि कोई कोई संस्कार इतना बुरा होता है कि उसका कुछ प्रभाव आ जाता है। संस्कार कैसे प्रभावित करता है, इस विषय में एक कथा प्रचलित है। एक चोर था, कहीं चोरी किया और तब तक राज कर्मचारी उसको देख लिए तो उसको अब पीछा किए पकड़ने के लिए, वो भागा जान बचाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में, लेकिन कर्मचारी भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। तब उसके मन में आया कि अब कहाँ बैठे, तो कहीं सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में ही जा करके बैठ गया। तो अब भाई साधुओं के समाज में तो लोग देखे भी नहीं, उनके कल्पना में भी नहीं कि इसमें कोई चोर बैठा होगा, तो उसको तो प्रकट लाभ मिल गया कि अब राजा के कर्मचारी आगे गए खोजते रहे ना, वो कहाँ मिलने वाला है। लेकिन वो तो प्रकट लाभ मिला, प्रसाद भी मिल गया होगा सत्संग के बाद, उस जगह भी बड़ा अच्छा जगह है, तो वो ज्वाइन कर लिया, आश्रम ज्वाइन कर लिया। तो साधुओं के यहाँ तो संत निवास होता है ना, आप लोग उसको डोरमेट्री कहते हैं, संत निवास, बड़ा हॉल है, आसन लगा हुआ है। तो सब साधु सोते थे अपने आसन पर, कमंडल रख देते थे, तो रात में जग करके कमंडल इधर से उधर कर देता था। अब साधुओं को बड़ी परेशानी कि ये कौन कर देता है, हमारा कमंडल उधर उसका इधर। अब वो महंत के पास कंप्लेन गया, महंत बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है, क्या बात है। तो एक दिन खुद वे देखने लगे कि कैसे घटना हो रही है, तो देखे कि वो साधु, वो जो नया साधु आया, वो रात में जग करके इधर से उधर कर रहा। तो चोरी तो उसका छूट गया, लेकिन जो संस्कार था उसके चलते कुछ कर रहा था। हम लोगों के यहाँ उसको कहते हैं चोरी छूट गए लेकिन तुम फेरी नाच। और उसको चोरी का संस्कार था तो किसी न किसी रूप में आ रहा था। तो ऐसे ही भक्तों के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा संस्कार होता है जो हावी हो जाता है, विकर्म हो जाता है। कुछ लोग बिलमंगल ठाकुर के विषय में कहते हैं वो उस गणिका से, चिंतामणि से उतना आसक्त हो गए, क्योंकि एक बार वे एक मरी हुई लड़की का स्पर्श किए थे। घटना इस प्रकार है कि एक राजा की बेटी थी, तो राजा बहुत उससे प्रेम करता था, लेकिन कम उम्र में ही उसके निधन हो गया, लड़की का निधन हो गया। तो अब इतना आसक्त था अपने बेटी में कि उसका जब दाह संस्कार किया, मतलब वो छोटी अवस्था के थे तो जलाया नहीं गया, छोटे लोगों को जलाया नहीं जाता है, मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो उसके साथ खूब आभूषण रख दिए। अरे आभूषण का सोने का ईंटा उसके नीचे रख दिया। और एक सन्यासी थे, उनको अपने आश्रम का वार्षिकोत्सव मनाना था और भंडारा के लिए फंड रेजिंग में बहुत व्यस्त थे। हम देखे कि वो लड़की के नीचे ईंटा रख रहा है सोने का, और ये तो कोई मतलब नहीं है, उसको हम लाते हैं साधु सेवा हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से वो रात्रि को गए और वो खोद करके ईटा ले आए, लेकिन सुनते हैं कि उसी समय आकाशवाणी हुई, सन्यासी हो करके स्त्री का स्पर्श कर रहे हो तो इसका परिणाम भी आएगा। वो सुनते हैं कि उसी का परिणाम हुआ कि वो गणिका में बहुत आसक्त हो गए। तो हम केवल इतना कह रहे हैं कि कभी कभी पीछे के प्रबल संस्कार बस कभी कभी विकर्म हो जाता है, लेकिन उसके लिए अलग से प्रायश्चित का विधान भक्ति में नहीं है, जो भगवान के ऊपर है उसको शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति के विषय में कई एक बातें बहुत ध्यान देने की है, समझने की है। हम लोग अभी साधन भक्ति पढ़ रहे हैं, अब कैसे क्रम है, क्या क्या और बोलना था, तो हमारा जो नोट्स है वो रूम पर छूट गया, लेकिन यही सब बातें हैं। तो हम लोग साधन भक्ति को और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अब उसके पहले कल का एक प्रश्न है कि गोपियां इतना दुख भोग रही हैं, वो क्यों नहीं वृंदावन से कृष्ण के पास चली जाती है, यह भाड़ा का पैसा नहीं है उनके पास, नहीं होगा तो छाया सुलभ करा देगी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो तो बहुत ही जानती नहीं है, ऐसे अपने स्तर से प्रश्न कर दी, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्ण क्यों नहीं आ जाते हैं या गोपियां क्यों नहीं चली जाती हैं, ये प्रश्न है ना। अब इस विषय में तो कृष्ण क्यों नहीं आ जाते हैं, और इसका उत्तर तो हम कृष्ण के मुख से ही देना चाहते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। हाँ उत्तर दिया था, लेकिन अब तो एक एक कोई कोई बात याद आ रही थी, कोई कोई बात याद नहीं आ रही थी। और कृष्ण क्या इसका उत्तर दे रहे हैं, तो इसको आप लोग और कृष्ण के शब्दों में सुनिए। उसके पहले राधा रानी का बहुत भारी आक्षेप है कृष्ण पर, बहुत भारी आक्षेप है कि कैसे आप भूल गए, इसको जल्दी जल्दी बांट दीजिए, जितना जल्दी आप। उसके पहले एक दो बात समझ लीजिए कि एक बार कुरुक्षेत्र में सब लोग जुट रहे थे, सूर्य ग्रहण लगा था, और जैसा वृंदावन बिहारी कह रहे थे कि द्वारिका से कृष्ण बलराम भी आ रहे थे, जब पता चला ब्रजवासियों को कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, एक हमको भी चाहिए वो कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो सब लोग श्रेयो विदित सया, अरे पुण्य तिथि में या पुण्य स्थान में कोई कार्य करते हैं तो उसका फल अधिक होता है, तो सूर्य ग्रहण वो भी सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा था, तो सब लोग वहां जुटे, सब लोग दान पुण्य कर रहे थे, लेकिन प्राय सब लोग जुट गए जिधर कृष्ण बलराम थे। अब कृष्ण बलराम को देख करके इतना आनंद हो रहा था कि राजा लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे यादवों की, कि जन्म लेना तो आप लोगों का सार्थक हुआ कि निरंतर कृष्ण का दर्शन करते हैं, और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे बहुत आनंद से, स्त्रियां भी एक दूसरे का आलिंगन करके मिल रही थी, तो सबके मिलन के बात करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोप्यस च, गोपियां भी। अब च क्यों कह रहे हैं कि सबसे विलक्षण और उत्कंठा इनकी थी, अरे गोपियों की तो यह स्थिति थी कि एक क्षण का बाधा पड़ने से पक्ष कृतम सपंती ब्रह्मा को गाली देती है, तो कृष्ण से मिली, कृष्ण आलिंगन किए, उनका कुशल वार्ता पूछे और उनको कुछ उपदेश दिए, तो उपदेश देने पर जैसा मैं कल कहा था कि यथा श्रुत अर्थ है कि उनका अज्ञान दूर हो गया, कोष ध्वस्त हो गया, जल गया, और वे कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, तो श्लोक है आहुष्य ते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिन्त मगाध बोधय संसार कूप पतितो तरणावलंबम गेहम जुसाम अपि मनस उदयात सदान, जो प्रार्थना कर रही है आहु, ये बहुवचन में है, सब गोपियां बोल रहे हैं, कोरस है, लेकिन फिर भी मुख्य स्वर राधा रानी का, और ये प्रार्थना है, तो प्रार्थना आप लोग बोलिए पीछे से या साथ में बोलिए, आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिन्त्य मगाध बोधय संसार कूप पतितो तरणावलंबम गेहम जुषामपि मनस उदयात सदा। तो यथा श्रुत अर्थ में कल बतलाया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसका वास्तविक अर्थ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी तहां तुमर पद द्वय कराई यदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। राधा रानी कह रही हैं कि दूसरे का हृदय मन होता है, लेकिन हमारा मन तो वृंदावन है। अभी हृदय और मन को आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, हृदय और मन को अलग अलग नहीं कर सकते ना, तो उसी तरह राधा रानी अपनी मजबूरी बना बतला रही हैं कि बने मने एक करी जानी, वो बन माने वृंदावन और हमारा मन तो एक है, ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अरे कोई प्रश्न करेगा कि अलग नहीं तो ये तो कुरुक्षेत्र में बोल रही हैं, तो कुरुक्षेत्र में गई हैं तभी बोल रही हैं ना, एक प्रश्न होगा ना कि भेंट तो कुरुक्षेत्र में हुई है, तो कुरुक्षेत्र में गई हैं तभी तो वहां कृष्ण से उलाहना दे रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। लेकिन अब इस बात को ऐसे समझिए कि कभी कभी लोग पासपोर्ट मांगने लगते हैं, हमको जाना था बहुत पहले, मॉरीशस जाना था, तो वहाँ से कहे कि पासपोर्ट भेज दीजिए। अब हम बड़े चक्कर में कि हम कैसे पासपोर्ट भेजेंगे। हमारा एक स्टूडेंट है मथुरा बिहारी, मैं कि पासपोर्ट, हाँ चलिए साइबर पर चलते हैं, स्कैन करके भेज देंगे कि अच्छा तो 10 रुपया लगा गया स्कैन का, 10 रुपया भेजने का, 20 रुपया में पासपोर्ट चला गया। और ले जाकर के पासपोर्ट में फिर अलमारी में रख दिया। तो सोचे कि हमारा पासपोर्ट मॉरीशस गया कि नहीं, आए छाया कॉपी गया, पासपोर्ट तो मैं अलमारी में रख दिया। तो उसी तरह राधा रानी छाया रूप से गई है, छाया राधा रानी गई है। पासपोर्ट का उदाहरण समझ रहे हैं ना, उसी से हमारा पर्पस तो हो गया पूरा ना तो राधा रानी कह रही हैं कि हमारा मौन और वृंदावन दो चीज नहीं है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो मनसी उद्यात, मन में उदय, तो मतलब वृंदावन में आप चरण रखेंगे तब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब इसी अपने भाव को प्रकट कर रही हैं कि प्राणनाथ सुनम और सत्य निवेदन, ब्रजा अमर सदन तहा तुमर संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। वृंदावन हमारा घर है और वहां जब तक आपकी भेंट नहीं होगी, आपसे मिलन नहीं होगा, तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा। पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात आमारे जोगा ज्ञाने कहिला उपाय, इस समय हमको आप उपाय सिखा रहे हैं कि तुम लोग भावना करो, हम तो सर्वव्यापक हैं। वो भावना करने से हमारा अनुभव होने लगेगा, तो ये नई बात नहीं कह रहे हैं। यही बात उद्धव के द्वारा भी आप कहे थे, इस समय डायरेक्ट कह रहे हैं। लेकिन तुम्ही विदग्ध कृपामय जाना हमारा हृदय, मोरे ऐसे कहते न जुआ है। लेकिन आप तो बहुत दक्ष आदमी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, और हमारे हृदय को भी जानते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि चिंतन करो, अनुभव होने लगेगा। अरे हम लोगों की स्थिति है कि चित्त काढ़ी तोमा है ते, विषय चाहे लगाई ते, यत्न करी नहीं काढ़ी वारे। अरे हम लोग तो चाहती है कि आपसे मन को हटा करके थोड़े देर तक काम धंधा में लगा दे, और प्रयत्न करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। राधा रानी की, गोपियों की स्थिति है कि प्रत्याहृत्य क्षणम विषयतः जस्मिन मनोधित सते। जो बड़े बड़े जोगी हैं तो प्रत्याहृत्य विषयतः, विषय से मन को हटा करके एक क्षण के लिए जिसमें रखना चाहते, लगाना चाहते, लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास जरूर करते हैं। प्रत्याहृत्य क्षणम मुनि विषय, तो जो बहुत चिंतनशील है, मुनि है, तो विषय से हटा करके एक क्षण के लिए जस्मिन मनोधित सत्य रखना चाहते हैं। और मुग्धेयम नहीं बाला सौ विषये सुधित सति ततः प्रत्याहरंती मन। यह जो लड़की है, यह तो वहां से मन हटा करके, जहां मुनि लोग एक क्षण के लिए अपने मन को रखना चाहते हैं, वहां से हटा करके विषय में लगाना चाहते हैं। गोपियों की इच्छा होती है कि थोड़ा सा कृष्ण से मन हट जाए, हम रोटी बना लें, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्या है, रोटी बेल करके तावा पर डाल लिया, तब तक मन तो कृष्ण के तरफ है। तो भाई रोटी तो अब उलाटेंगे नहीं तो धुआं आ जाएगा ना, अब धुआं आया तो सास की डांट तो पड़ेगी ही। तो डांट से बचने के लिए वे चाहते हैं कि कुछ देर तक मन हट जाए कृष्ण से, ये काम अपना संपादित कर दे। तो चित्त काढ़ी तोमा है ते, विषय चाहे लगाई ते, यत्न करी नारी काढ़ी बारे, तारे ध्यान शिक्षा कराई, लोका हसाइया मार, स्थान स्थान न कर विचार। अब उस व्यक्ति को आप शिक्षा दे रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, अरे थोड़ा प्रीचिंग कर रहे हैं तो कैंडिडेट पर भी विचार करना चाहिए ना कि कहाँ कौन बात बोलना चाहिए। और प्रीचिंग का कुछ ज्ञान लिए नहीं, ट्रेनिंग लिए नहीं, प्रीचर हो गए। और एक कह रहा है कि नाही गोपी जोगेश्वर पद कमल तोमर ध्यान करी पाइबे संतोष जोगेश्वर हृदय विचिंत मगाध बोध है। कि जो योगी हैं उनके चिंतन का विषय है आपका चरण कमल। हम लोग कोई योगी नहीं है कि ध्यान करके संतुष्ट हो जाएंगे। और तुम्हारा वाक्य परिपाटी तार माध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरो बढ़े रोष, इस ढंग की बात कहते हैं तो हम लोगों को संतोष नहीं होता है और क्रोध बढ़ता है। और हम लोगों को कोई संसार कूप से निकलने की समस्या नहीं है कि आपके चरण का ध्यान करें। देह स्मृति नहीं जा संसार कूप कहा तार ताहा इतने नाचा उद्धार। हम लोग संसार से बाहर नहीं जाना चाहते। अब हम लोगों के देह की स्मृति ने भवबंधन कहाँ से आए। अरे विरह समुद्र जले कामा तिमिंगिले गिले गोपी गणे नेहतार पार। हमारी समस्या दूसरी है, हम तो विरह रूप समुद्र में डूब रही है, काम रूप तिमिंगल निगल रहा है, तो इससे पार ले चलिए। और विदग्ध मृदु सद गुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्हें तुम्हार नहीं दोषा भात। कि आप पर विचार करने पर यही लगता है कि आप कोई कठोर व्यक्ति नहीं है। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बन सही कुंज राशा दिख लीला सही ब्रजर ब्रज जन माता पिता बंधुगढ़ बड़ा चित्त केमन पसारीला। बहुत आश्चर्य की बात है कि वृंदावन के उस मधुर लीला को माता पिता को कैसे भूल गए। हम लोग आप पर दोषारोप नहीं कर रही है कि आप कठोर चित्त के हैं, आपका चित्त तो कोमल ही है, लेकिन हम लोगों का भाग्य इतना बुरा है कि इसके चलते आप जैसा सहृदय व्यक्ति भी हम लोगों को भूल गया है। लेकिन एक बात करें कि नागणी अपन दुख देखे ब्रजेश्वरी मुख ब्रजर जन हृदय बिदरे। अपने दुख को तो हम लोग सह लेती है लेकिन जसोदा के मुख देखने पर चित्त विदीर्ण हो जाता है। तो कीवा मारा ब्रजवासी किया जीवा वो ब्रजे आसी केना जिया वो दुख सही बारे। अरे तो एक काम कीजिए कि या तो ब्रजवासियों को मार ही दीजिए नहीं तो आकर के उनको जीवित कीजिए। ये दुख सहने के लिए क्यों जिला रहे हैं। तुम्हारे जो अन्य वेश अन्य संघ अन्य देश ब्रज जने कहू नहीं भाई। एक प्रश्न होगा कि यही आकर के क्यों नहीं दर्शन कर रही है। तो कह रहे हैं कि जो दूसरे स्थान पर या दूसरे भेष में ब्रजवासियों को थोड़ा भी पसंद नहीं। जब वृंदावन में आपका दर्शन करेंगे हम लोग तब संतोष होगा। तो तुम्हारा जो अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कभू नहीं भाए। दूसरे जगह लिखा गया है तो राधा रानी कह रहे कि यहाँ तो हाथी घोड़ा है तो बंदूक है तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ब्रज भूमि छाड़ीते नारे तोमा न देखिले मरे ब्रज जनर की हवे उपाय। राधा रानी कह रहे हैं कि ब्रज तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो ब्रज भूमि छाड़ीते नारे तोमा न देखिले मरे। और जब तक आपका दर्शन नहीं होगा और तब तक हम लोगों का मरण ही है तो क्या उपाय है। ये वृंदावन की महिमा है। कृष्ण के दर्शन की लालसा है लेकिन गोपियां वृंदावन का त्याग नहीं कर सकती। गोपियों की बात तो दूर है, कई एक साधारण भक्त आज के भी भक्त हैं उनका भी नियम है कि वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। वृंदा विपिन सीम के बाहर हरिहू निहार। ब्रजमंडल के बाहर भगवान ही खड़े हो और कहे कि आ जाओ दर्शन कर लो कि ना इसके बाहर नहीं जा। आज भी बहुत लोग और गोपियों की तो स्थिति है कि कृष्ण का वहां दर्शन भी करे तो उनको सुख नहीं है। चूंकि जो भगवान का माधुर्य उभरता है तो वह अपने परिकरों के अनुसार उभरता है। कई एक चीज में अंतर हो जाता है ना, खूब अच्छा बकता है लेकिन कभी कभी ऐसा समाज मिल जाता है कि उसकी बोली नहीं निकलती है। तो उसी प्रकार भगवान का सौंदर्य इत्यादि सब जगह एक जैसा नहीं रहता है। वृंदावन में उसका दूसरा प्रकाशन है और जो वृंदावन में दर्शन किया है तो दूसरे जगह उसे संतोष ही नहीं होता है। तो एक तो गोपियों की स्थिति यह है कि वृंदावन से इतने आसक्त हैं कि वृंदावन का त्याग नहीं करना चाहती, और दूसरी बात है कि वो त्याग कर भी दे, कृष्ण का दर्शन भी हो जाए तो अब संतुष्टि नहीं होगी, तो इसलिए गोपियां वृंदावन का त्याग नहीं करती है। अच्छा, अब कृष्ण क्यों नहीं आ जाते हैं, तो अब कृष्ण के शब्द को सुनिए। तो कह रहे हैं कि प्राणप्रिय सुनिए राधिका वाणी, ब्रज प्रेम मने यानी भावे व्याकुलित देह मन। जे ही राधा रानी के बात को सुने तो कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम और उच्छलित हो गया। पहले से ही प्रेम है लेकिन इतना उच्छलित हो गया कि भावे व्याकुलित देह मन, उनका मन भी व्याकुल हो गया, देह भी कांपने लगा। केवल मन में परिवर्तन नहीं हुआ, देह में भी। और ब्रज लोकर प्रेम सुनी अपना के ऋणी मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासन। जब ब्रजवासियों के प्रेम को सुने तो कृष्ण तो अपने को ऋणी मानने लगे और ब्रजवासियों को आश्वासन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राण प्रिय सुनम हो रहा ये सत्य वचन तुम्हें सब स्मरण है झूरो मुई राति दीने, यानी कि मैं एकदम सत्य सत्य कह रहा हूँ, तुम लोगों के स्मरण में मैं रात दिन जलता रहता हूँ। मोरा दुख ना जाने कुन जान, लेकिन हमारे दुख को कोई समझ नहीं रहा है। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सभे है मोरा प्राण सम, जो भी ब्रजवासी है ये माता पिता सब हमारे प्राण के समान है। तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन तुम्हें मोर जीवन रे जीवन, उसमें भी गोपियां तो हमारे जीवन ही है, तुम तो जीवन के भी जीवन हो। तोमार सभार प्रेम रसे आमा के करील बसे आमी तुम्हार अधीन केवल, कि तुम्हारा प्रेम तुम लोगों का प्रेम हमको अधीन कर लिया है और केवल तुम लोगों के प्रेम के अधीन मैं हूँ। तुम्हार सब छाड़ैया आमा दूर देश लैया राखिया चे दुर्दैव प्रबल, मैं तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ लेकिन हमारा दुर्दैव दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि तुम लोगों से अलग कर दिया है। लेकिन भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि प्रिया प्रिय संग ही ना, प्रिया प्रिया संग बिना ना ही जिए, ये सत्य प्रमाण। कोई प्रश्न कर सकता है कि इतना प्रेम है तो आप जीवित कैसे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये सिद्धांत है कि सच्चा प्रेम है तो विरह में प्रेमी जीवित नहीं रहते हैं। लेकिन मोरा दशा सुने जबे तारा यही दशा हबे यही भय दुहे राखे प्राण, लेकिन विरह में भी दोनों जीवित हैं केवल इस आशय से कि यदि मैं आत्महत्या करता हूं तो इसको सुन करके हमारे प्रेमी भी आत्महत्या कर लेगा, तो दूसरे के जीवन के रक्षा के लिए दोनों अपने प्राण को धारण करते हैं। से ही सती प्रेमवती प्रेम मान से ही पति वियोगे जे वांछे प्रिय हिते, भगवान कह रहे हैं कि प्रेमवान पति तो उसी को माना जाएगा कि दूर में है, सामने नहीं दूर में, फिर भी अपने प्रिया का हित चाहे, और सच्ची पतिव्रता या सती तो उसी को माना जाएगा कि पति से दूर रह करके भी उसका हित चाह रही है। नागणे अपन दुख वांछे प्रिय जन सुख से ही दुई मिले अचिराते, भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि प्रिया और प्रियतम दोनों अपने दुख पर विचार नहीं कर रहे हैं, अपने प्रेमी के हित का ध्यान रख रहे हैं, तो जल्दी ही दोनों मिल जाते हैं। राखित तुम्हारा जीवन सेवी आमी नारायण तार सकते आसी नीति नीति। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं तो नारायण की सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और उनके शक्ति से मैं रोज ब्रज में आता हूँ। तोमा सने क्रीड़ा करी नीति जाई जदुपुरी ताहा तुम्हें मानह मोर स्फूर्ति। भगवान के शक्ति से मैं ब्रज में आ जाता हूँ, तुम लोगों के साथ लीला भी करता हूँ, विलास करता हूँ, लेकिन तुम लोग उसको सपना मानती हो। मोर भाग्य मो विषय तुम्हारा जो प्रेम है से ही प्रेम परम प्रबल। कि हमारा भाग्य है कि मेरे प्रति तुम लोगों का प्रेम है वह बहुत प्रबल है। अभी तो हमको छिप करके ला रहा है, लेकिन इतना ये प्रबल प्रेम है कि थोड़े दिन में ही एकदम प्रकट यहाँ खींच करके लाएगा। ज्यादा बेर विपक्ष जता दुष्ट कंस पक्षत आमी कोलु सबक्ष। भगवान कह रहे हैं कि यादवों के जो विपक्षी थे कंस के पक्ष वाले हैं, तो लगभग सबको अब मैं मार डाला हूँ। आछे दुई चारी जन तहा मारी वृंदावन आई लम आमी जानी है निश्चय। तो दो चार बच्चे हैं उनको मार करके निश्चय ही मैं वृंदावन में आऊंगा। से ही शत्रुगण है ते ब्रज जन राखी ते रही राज्य उदासीन है। क्योंकि वे शत्रु ब्रज पर आक्रमण न करें तो ब्रज के रक्षा के लिए हम उधर हैं। उधर हैं तो उधर आक्रमण करते हैं, ब्रज में आने पर तो ब्रज में आक्रमण करेंगे। जेवा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरण जदुगर संतोष लागिया। अभी बाहर से देखने में लगेगा कि आप विवाह किए हैं, जादुओं के साथ रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम उनके संतोष के लिए व्यवहार कर लेते हैं, हम तो केवल तुम लोगों के प्रेम के अधीन है। तो तुम्हारा जो प्रेम गुण करे आमा आकर्षण अनमे आमा दिन दस बीस। जो तुम्हारा प्रेम है हमको खींच रहा है और 10-20 दिन में खींच करके ला देगा। तो एत तारे कही कृष्ण ब्रज जायते सतृष्ण। एक श्लोक पढ़ तोमा जे प्रेम गुण पुनः आसे वृंदावन ब्रज वधु तोमा सने बिलसे रजनी दिवस। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि थोड़े दिन में आ करके रात दिन तुम लोगों के साथ विलास करेंगे। तो एत तारे कही कृष्ण ब्रज जायते सतृष्ण। एक श्लोक पढ़ी सुनाई ल। इतना कह करके भगवान ब्रज में आने के लिए ललायित हो गए और एक श्लोक सुनाए। से श्लोक सुनी राधा खंडी लकल बाधा कृष्ण प्राप्त प्रतीत है। और जब राधा रानी उस श्लोक को सुनी तो उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण कहे हैं कि आयास से जब रथ पर बैठ कर के जा रहे थे, गोपियां के मन में आया कि अब लज्जा किस दिन के लिए हम लोग रखेंगे, चल करके कृष्ण को रोकती है। और वे आगे बढ़ी लेकिन कृष्ण से कुछ बोल नहीं पाई, वो रास्ते में मूर्छित हो गई, जड़ता विकार आ गया। वे उधर देख रही थी, कृष्ण उनकी स्थिति को देख करके एक दूत से मैसेज दिए कि जाकर के कह दो कि आयास से। तो गोपियों को भगवान के वचन पर इतना विश्वास है कि आज तक प्रतीक्षा में है कि कृष्ण आएंगे। रोज सुबह सुबह जगते ही वे कृष्ण के लिए माखन निकाल करके तैयार रखती है, छत पर चढ़ करके रोज मथुरा के तरफ देखती है। रोज संध्या हो जाता है लेकिन कभी कृष्ण में दोष बुद्धि नहीं होती। ये प्रेम का लक्षण है। उनके मन में यही भावना आती है कि चाहे हमारे प्रियतम आज नहीं आए किसी कारण से, तो कल तो जरूर आएंगे। तो श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो सुबह होते ही गोपियां दही मतने लगती है, गीत गाने लगती है। अरे प्रश्न उठाया गया कि किस लिए ऐसा कर रही। तो उनके भगवान के वचन पर विश्वास है कि कृष्ण कहे हैं आऊंगा तो आएंगे, इसलिए पहले से तैयार रहती है। तो भगवान ब्रज में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो भगवान ही उत्तर दे रहे हैं कि समस्या है, अभी शत्रु पक्ष पूरा समाप्त नहीं हुआ है। और गोपियां क्यों नहीं छोड़ रही हैं, इसका उत्तर है कि ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहती, वह वृंदावन से इतनी आसक्ति है कि इसका वो त्याग ही नहीं करती है। और कदाचित त्याग भी कर दे, कृष्ण से मिलन भी हो जाए, तो वृंदावन में जो आस्वादन कृष्ण का होता है वो आस्वादन नहीं मिलेगा, उनको संतोष होगा नहीं, तो इसलिए त्यागने का छोड़ने का कोई मतलब नहीं। तो यह एक सिद्धांत हुआ, इसके साथ और भी अनेक सिद्धांत है। तो आप लोगों को कुछ आइडिया आ रहा है कि क्यों नहीं कृष्ण आ रहे हैं या गोपियां क्यों नहीं छोड़ रही है? देखिए, प्रेम के तरंग में भाव बदलता रहता है ना, प्रेम का तो कई एक भाव आते रहते हैं, तो क्षणिक रूप से ऐसा भाव आ सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो सिद्धांत दिया गया है तो एक सिद्धांत स्पष्ट है कि गोपियों को विश्वास है कि आएंगे कृष्ण, इसी से ब्रज में है। और दूसरी बात यह है कि गोपियों को कोई कठिनाई भी नहीं है, कृष्ण नहीं भी है तो उनके आत्मा के साथ तो है ना गोपियां, राधिका तो आत्मा तस्य, राधा रानी आत्मा है तो आत्मा के साथ ही है, तो बहुत कठिनाई भी नहीं है। और कई एक बात है, ठीक है, हरे कृष्णा।